बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की।
साई के संग ससुर आई, संगन सोती स्वादन मानी, गयो जो बन सपने की नाई। साई के संग ससुर आई, जनाचार मिली लगन सुधाई, जना पांच मिली मंडप छाई, सखी सहे नरी मंगल गावे, सुख दुख माथे हर दी चढ़ाई, साई के संग ससुर आई। नाना रूप पड़ी मन भंवरी, गांठी जोड़ी भाई पति आई, अर्धे देने चली सुहासी, चौके रंग भई संग साई, साई के संग ससुर आई। भयो विवाह चली बिनु दुल्हा, बाट जात समधि समझाई, कहे कबीर हम गौने जईबे, तरब कंथले तुर बजाई, साई के संग ससुर आई। संगन सूती स्वादन मानी, गयो जो बन सपने की नाई, साई के संग ससुर आई।
कबीर के चिंतन का नाम राम था, किंतु जब कभी किसी ने पूछा कि भगवान क्या करते हैं आप, तो बोले भाई मैं उस पिया को मना रहा हूं। कारण कि पति का अर्थ होता मेरी पत राखो गिरधारी, भगवान मेरी पत को रख ले, मेरी इज्जत मेरी मर्यादा को रख ले। बाहर कोई इज्जत चली गई, किसी ने अपशब्द कह दिया, इज्जत चली गई, दो झापड़ मार दिया, इज्जत दुगनी चौगनी हो गई, तो ये क्षुद्र इज्जत आती जाती रहती। लेकिन शरीर जब तक श्वास है तब तक के लिए है, उसके बाद तो सोईपुर पाटन बहुरी ने देखा आई, उस इज्जत का आगे कोई लेखा जोखा नहीं। चौथे दादा का नाम तक भूल गए लोग, जबकि वो अपनी मर्यादा के लिए उतने टाइट थे जितने आप हम हैं। तो ये इज्जत तो आती जाती है, लेकिन ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा का विशुद्ध अंश अविनाशी निर्मल सहज सुख राशि आत्मा है, वो आप ही का स्वरूप छिपा हुआ है। ऐसे निर्मल स्वरूप के होते हुए भी हम बारंबार गर्भवास की अनंत योनियों का भ्रमण कर रहे हैं, मल मूत्र पीप से सनी हुई इस योनियों का यातनाएं सहते हैं। इस दयनीय दशा से उबार लेने में कोई सक्षम है तो कौन, परमात्मा। इसलिए परमात्मा को पति ही कहकर संबोधित किए। हनुमान ने परीक्षा ली भगवान राम की, और सुग्रीव था घबराया हुआ कि कहीं बाली ने भेजा होगा, ये सूरवीर दिखाई दे रहे हैं, हनुमान मुझे इशारा कर देना मैं भाग जाऊंगा। तो हनुमान ने आते ही बड़ा संस्कृत में प्रश्न रखे, विप्र के वेश में आया, भगवान भी टालते रहे काफी देर तक। जब अंत में ही निर्णय हो गया कि यही राम है, जो अवतार हुआ था वो यही है, तो हनुमान चरणों में गिरा, बोले प्रभु सेवक को बड़ी देर में पहचाना। तो भगवान ने कहा सुनो कपि जिए मानस जन ऊना, तैमम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तुम जी में लेश मात्र भी गला नहीं मत मान, तुम मुझे लक्ष्मण से दूने प्रिय हनुमान। तो जानी पवन सुत कपि पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सुला। हनुमान जी ने पति को अनुकूल समझा, हृदय हर्ष से प्रफुल्लित हो गया, सारा दुख दूर हो गया। पति को अनुकूल समझा, हनुमान स्त्री तो नहीं थे, बानर जातीय पुरुष थे। तुलसी ने प्रार्थना किया मानस में कि यह अभिमान जाहि जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ये अभिमान भूल के भी मेरा कभी न जाए कि मैं सेवक हूं रघुपति मेरे पति। पति इज्जत उस मर्यादा को रखने वाले हैं, आवागमन से मुक्ति दिलाकर शाश्वत आपका जो सहज स्वरूप है मर्यादित निर्मल अखंड, उस स्थिति को दिलाने वाले हैं। इसलिए पति कहकर संबोधित किया। साईं का मतलब भी मालिक ही होता है। प्रियतम जो प्रिय, उत्तम से प्रियतम जो प्रीति का सर्वोपरि माध्यम, एक बार संबंध जुड़ गया तो फिर कभी अलगाव नहीं होगा, कभी बिच्छो नहीं होगा, इसलिए प्रियतम कहकर संबोधित किया। तो जब कबीर से किसी ने पूछा तो परमात्मा का मौलिक चित्रण किया। मैं राम भक्त हूं ऐसा नहीं था, परमात्मा के जो मौलिक स्वरूप है उसका चित्रण किया, उसकी ओर संबोधित किया कि प्रियतम मोशन रूठ लो, वो प्रियतम मुझसे रूठे हुए मैं उन्हें मना रहा हूं। और ठीक इसी भजन में साईं कहकर संबोधित किया कि साईं के संग सासुर आई। पहले ईश्वर पथ में एक रूढ़ी बहुत समय से पनप रही, आज घर छोड़ा, दो चार महीना जब तक थ्योरी स्टडी नहीं हुई तब तक सेवक साधक, और जब थ्योरी स्टडी हो गई तब सिद्ध पूर्ण परमात्मा स्वरूप, अब कहीं भगवान है तो उनसे हल्का होगा। इस प्रकार ये रूढ़ियां कृष्ण काल में भी थी। भगवान कृष्ण ने इस पर उसका खंडन किया कि अर्जुन तुझे ज्ञान मार्ग अच्छा लगे चाहे निष्काम कर्म योग, दोनों के अनुसार कर्म तो करना ही होगा। न तो ऐसा ही है कि कर्म न आरंभ करने से कोई निष्कर्म, निष्कर्म मतलब अकर्मण, न आरंभ करो, न आरंभ करने से कोई निष्कर्मता की सिद्धि को प्राप्त होता है, और न आरंभ की हुई क्रिया को त्याग देने मात्र से कोई उस परम सिद्धि को पाता है। तो तुझे ज्ञान मार्ग अच्छा लगे चाहे निष्काम कर्म, दोनों के अनुसार कर्म तो करना ही होगा, क्रिया करना पड़ेगा। कर्म माने आराधना, चिंतन। क्षण मात्र भी कोई पुरुष बिना कर्म किए नहीं रहता, क्यों कि प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश होकर वो कर्म में ही बरतता है। अर्थात जब तक सत्र स्तंभ तीनों गुणों का नाम प्रकृति है, ये त्रिगुणमय प्रकृति है, इन तीनों गुणों में से कोई ना कोई गुण जीवित है आपके हृदय में, तब तक वो कर्म करा ले। क्षण मात्र भी मन शांत नहीं हो सकता, वो नचा देगी, वो गुण आपको चलायमान कर देंगे, तो क्षण मात्र भी कोई शांत नहीं बैठता। इसलिए कर्म कर। इतने पर भी जो लोग हट से इंद्रियों को रोककर मन से विषयों का स्मरण करते रहते हैं अर्जुन, और कहते मैं ज्ञानी, मैं पूर्ण हूं, मैं आत्मा हूं, अर्जुन वो दंभाचारी है, पाखंडी, वो धूर्त। दूसरे स्थान पर कहा इसका मतलब कि हाथ पे हाथ धर के बैठने वाले थे तब तो खंडन किया। और अध्याय 6 में बताया अनासृतः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है स संन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिय। फल के आश्रय से रहित होकर कार्यम कर्म, जो करने योग्य प्रक्रिया विशेष है, जो उसे करता है वही सन्यासी है, वही योगी है। केवल अग्नि को त्यागने वाला और क्रिया को त्यागने वाला न तो सन्यासी है और न योगी। आजकल भी अग्नि और क्रिया को त्यागने वाले हैं। काशी में बहुत एक संगठन चल रहा है जो कहते मैं ज्ञानी हूं, मैं आत्मा हूं, वो अग्नि नहीं छूते और कोई भजन भी नहीं करते। ये कृष्ण काल में थी। कहते हैं कि जो कार्यम कर्म, जो करने योग्य क्रिया है जिसको नियत कर्म कहते हैं, जो योग साधना की एक निश्चित विधि है उसको करता है वही सन्यासी होता है, वही योगी। केवल क्रिया को त्यागने वाला न तो सन्यासी होता है न योगी। तो यम सन्यास मिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडवा न ही सन्यास्त संकल्पो योगो भवति कश्चन। जिसको सन्यास कहते हैं उसी को अर्जुन तू योग जान, किंतु संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी पुरुष सन्यासी अथवा योगी नहीं हो सकता। तो कह दो हम संकल्प नहीं करते, हमने कर दिया संकल्पों का त्याग, आपके कहने से संकल्प नहीं रुकेंगे। ये तो मन के, मन का प्रवाह का नाम संकल्प है। इसलिए वो संकल्प कैसे निरोध होंगे? तो आरु रुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समयः कारण मुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले पुरुष को चाहिए कर्म करे, कोई नियत कर्म। कर्म उत्थान होते होते इतना उन्नत, इतना सूक्ष्म हो गया, चोटी पर पहुंचा दिया कि योगारूढ़ता आ गई, योग की परिपक्वता आ गई, समय कारण मुच्यते। उस टाइम सम माने सर्व संकल्पों का अभाव, मन का अचल स्थिर ठहरना ही कारण है। और जब तक हम क्रिया नहीं करेंगे, क्रिया उत्थान होते होते जब तक योगा रूढ़ता नहीं आएगी, तब तक संकल्प आपका पिंड नहीं छोड़ेंगे। इससे पूर्व कोई सन्यासी नहीं, कोई योगी नहीं। यदा ही नैन इंद्रियार्थ सुन कर्म स्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगा रूढ़स्य तदोच्यते। जिस काल में पुरुष ने तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है और नहीं कर्मों में आसक्त होता है, उस वक्त सर्व संकल्पों का अभाव है, वही सन्यास है, उसी को योगी कहते हैं। अर्थात भजन नितांत आवश्यक है। इतने पर भी आज भी 10 दिन घर छोड़े हुआ 11वें दिन पूर्ण योगी हो गए। इस तरीके से कबीर काल में भी ये परंपरा थी, आज भी लाखों की संख्या में ये परंपरा है। आज घर छोड़ा, 4-6 महीने थ्योरी स्टडी करो, स्टडी होगी, रटते बन गया, 5 तत्व 25 प्रकृति तय आत्मा तय शुद्ध शरीर नश्वर, मैं इंद्रियों का विषय नहीं हूं, मैं इंद्रियों से परे हूं, मन से परे हूं, मैं तो शुद्ध हूं, इतना कहते बन गया तो आप पूरे हो। तो कबीर कहता है ऐसा कहने से कोई पूर्ण नहीं होता, पहले साईं का संग दर्शन और स्पर्श, तब सह स्वरूप में स्थिति आती, अन्यथा कदापि। तो साईं के संग ससुर आई, पहले साईं माने परमात्मा, परम पिया परमात्मा, पहले उनका संग, और जहां वो स्पर्श करने को मिले, जहां उस प्रभु की संगत भी, तो सह माने होता वह परमात्मा अविनाशी तत्व, उस अविनाशी तत्व में स्थिति आ गई। बिनु देखे वह देश की बात कहे शोकूर, आप ही खारी खात हैं बेचत फिरे कपूर। बिना देखे ही कहते हैं कि हमने वो देश ऐसा, वो देश वैसा, अपने खारी खाता है, वो कूर है, वो कुकुर है, भौं-भौं-भौं करता है, भूखता है, अपने खारी खाता है, कपूर बेचता फिर रहा है। बिनु देखे बिनु दर्श परश बिनु नाम लिए क्या हुई, जब तक देखने को नहीं मिले, दर्श और स्पर्श करने को नहीं मिले, तो धन के कहे धनिक जो हुए निर्धन रहे न कोई। जब तक देखने को न मिले, दर्श स्पर्श न करने को मिले, तब तक कभी कल्याण नहीं। कबीर कहता पहले साईं का संग, तब फिर सह माने वह परमात्मा, परमात्मा के स्वरूप में आपके स्वर की स्थिति आई। तो भला परमात्मा के संगत में स्थिति आई तो परमात्मा है कैसा, कि संगन सुते स्वादन मानी गयो जो बन सपने की नानी। दुनिया में एक व्यवहार में देखा जाता है कि शादी विवाह हो गया तो साथ रहते हैं, लेकिन वो परमात्मा का संगत कैसी है, संग न सूती, जहां प्रभु को जाना तो जानत तुम ही हो जाए, तुम्हें जानकर वो तुम ही हो जाता है, सेवक सदा के लिए खो जाता है, स्वामी का स्वरूप ही शेष बच रहता है। तो संग तो तब हो जब वो अलग हो, इसलिए संग न सूती। जब तक हम रास्ते में थे तब तक मेरे अंदर था कि मैं ज्ञानी हूं, मैं ध्यानी हूं, अपनी अवस्थाओं का, उससे मिलने वाली अनुभूतियों का टेस्ट था, हमारे पास स्वाद था कि ये अनुभव में मिला, ये प्रभु ने बताया। लेकिन जब उसका दर्शन स्पर्श के साथ उसी भाव को प्राप्त हो गया, स्वाद भी खत्म हो गया, एक में एक का भान तो होता नहीं, और गयो जोबन सपने की नहीं। अब कुचली अवस्था में था, तब तक मुझे ईश्वरीय शक्ति ब्रह्म पीयूष का पावर था, अब हम अलग सत्ता रही नहीं गई, और हम जीव भाव में नहीं रहे, तो गयो जोबन सपने की नहीं। पहले ये भाव रहता कि मैं ज्ञान ध्यान की मेरे अंदर क्षमता है, ये जोबन है, ज्ञान की मुझ में क्षमता है, ये उसके अंदर पावर है, जवानी है, वो स्वप्नवत चला गया, जैसे हम कभी अलग थे ही नहीं, मिले ही नहीं। इसी का नाम है अवधु सहज समाधि भली, सहज है, सम है, अनादि है, उसी के साथ रहनी आ गई, तो वही रहनी एक भली है, वही स्थिति है, वो पहले साईं। लेकिन ऐसा संभव तब है, पहले साईं का संग दर्शन स्पर्श, तब उस सह माने हुए प्रभु, उस परमात्मा भाव में प्रवेश मिला, साईं के संग सासुर आई। सुर कहते हैं श्वासा को, सुरा को, इस सुरा के सुरा का संचार उस सह माने परमात्मा में हो गया, परमात्मा सुरा में प्रवाहित हो गया, वो स्थिति आ गई। ठीक है, माना कि जब वो पहले दर्शन तब स्थिति, और जब स्थिति आई तो वो भिन्न नहीं रह गया परमात्मा संग निवास करने के लिए, और न स्वाद ही रह गया कि ये अनुभूति मिली वो मिला, और न जवानी ही रह गई कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है, ये ज्ञान का बल है, ध्यान का बल है। किंतु वहां तक की दूरी आप तय की तो कैसे की? तो जना चारि मिली लगन शोधाई, जना पांच मिली मंडप छाई, जना चार मिली लगन सुधाई, वेखरी मध्यमा पशंती और परा। कर्म सा एक बाणी ने दूसरी बाणी को पकड़ा, दूसरी से तीसरी पकड़ में आ गई, तीसरी से चौथी पकड़ में आ गई, कर्म सा चारों बाणी मिलती चली गई एक के बाद एक, इसके द्वारा लगन की शोध मिलता चला गया कि हाँ लगन सही दिशा में, लगन संशोधित होती चली गई। जना चार मिली लगन शोधाई और जना पांच मिली मंडप छाई, पांच रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, आंखें रूप देखती हृदय में रूप पा गया, जबान रस ढूंढती हृदय में ब्रह्म पीयूष रस पाया, प्रभु के चरणों का स्पर्श पाया, प्रभु की वाणी को सुनने को पाया। तो जो बाहर ढूंढ रहा था सुख के लिए, जो इंद्रियां तरस रही दौड़ रही दौड़ा कर रही थी, वो सिमट के हृदय में पा गई। जब पांचों मिल गई हृदय में, इसके तद्रूप प्रसाद संचारित हो गई, तामंडप छाई, ता पर परमात्मा का वरद हस्त मिल जाता है जिसका नाम मंडप है। अब उनकी छत्र छाया में कोई खतरा नहीं। जब आंख से हम उन्हीं को देखते हैं, दृष्टि से, कानों से केवल उन्हीं के शब्द के लिए हम लालायित हैं, मन कर्म वचन से उदरी लो लग चली है, तो जब पांचों ज्ञाने इंद्रिय बड़ी खतरनाक, पांच कुतिया राम की करे भजन में भंग, इनके टुकड़ा दे यके तब करिए सत्संग। कबीर ने इनको जब ये चंचल थी तो इनको कुतिया की संज्ञा दी, लेकिन जब पांचों संयत हो गई, पांचों ज्ञाने इंद्रियों का कार्य है रूप देखना, रस पकड़ना, गंध शब्द और स्पर्श, तो इस सीमट के जब ये हृदय में प्रभु चरणों में स्पर्श पाई, उसी रूप से संतुष्ट हुई, उसी ब्रह्म पीयूष से संतुष्ट हुई, उनकी वाणी के लिए लालायित हुई, पांचों ज्ञानेन्द्रियां साथ देने वाली भी मिल गई, और जो प्रभु के अनुरूप ढल गई तहां प्रभु की छाया मिल गई। तो जना पांच मिली मंडप छाई, मंडप एक ऐसी छाया जिसमें सुरक्षित दुल्हा दुल्हन रहते हैं ना, यह है मंडप प्रभु का वरद हस्त, उनकी छत्र छाया के अंतर्गत पहुंच गया। सखी सहेलरी मंगल गावे, सुख दुख माथे हरदी चढ़ाई। अब तक इंद्रिय हमारी शत्रु थी, जहां तहां इंद्रिय ने तान्यो, जिधर इंद्रियों ने खींच दिया उधरी हमें गिरना पड़ा। भगवान कृष्ण ने इंद्रियों को बड़ा बलात्कार से अपहरण करता बताया, दस्यु की तरह है ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात्कार से, और जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है उस अयुक्त मन को घसीट के उठा के पटक देती है। इतनी बलवान, इतनी शत्रु, लेकिन जब इष्ट के अनुरूप ये संयत हो गई तो सखी हो गई, मित्र हो गई। आदि शंकराचार्य ने इंद्रियों को ही शत्रु और इंद्रियों की मित्र कहा, दूसरा कोई ने शत्रु है न मित्र। कह शत्रु संति निजेन्द्रिया ताने व मित्राणी जीतानिया। शिष्य ने पूछा भगवान शत्रु कौन, तो बोले अपनी इंद्रियां, किंतु यदि जीत ली जाती है तो वही मित्र बनकर मित्रता में बरतती है। तो अब जब ये इष्ट के अनुरूप ढल गई तो अब ये सब जिधर चाहो उधर चलने वाली हो गई, साथ निर्वाह करने वाली हो गई। अब ये सखी है, सहेलरी है, भली प्रकार साथ निर्वाह करने वाली है, मंगल गावे। आज तक ये इंद्रियां अमंगल गायन कर रही, जिसमें अनिष्ट हो हमारा, बारंबार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम इस परिधि में घुमाने वाला अनिष्ट है, अनिष्टकारी कृतियों में भटकाने वाली थी, अब मंगल परम कल्याण जिसमें उसका चिंतन करने लगी, उसका गायन चिंतन माने, गायन माने चिंतन करने लगी, और सुख दुख माथे हरदी चढ़ाई, हृदय की स्थिति सुख और दुख से ऊपर उठ गई। तो इंद्रियां ही तो सुख दुख भान करती थी, वो तो मंगल गायन में लग गई, न शोक्यम न दुख्यम, कोई इंद्रियों के अनुकूल पदार्थ मिलने पर न तो सुख प्रतीत सुख प्रतीत हो न प्रतिकूल मिलने पर कोई दुख प्रतीत हो, तब समझना चाहिए कि हाँ अब साधना ठीक, इंद्रिय सही दिशा में, तो हृदय की स्थिति सुख दुख से ऊपर उठ गई। जब यह अवस्था आ गई, आगे विघ्न बंधन छूटने का समय आया है, विघ्न आएंगे तो नाना रूप पड़ी मन भवरी, नाना रूप जब इतना संयत हो गया तो रिद्धियां सिद्धियां सब सामने चमकने लगती, जो मन में भंवर डालने लगती है, मान सम्मान तमाम पवारा सामने आ जाता है, ये मन में भंवर डालने लगती है। कोई नाव यदि भंवर में फंस गई तो क्या होगा है? डूब जाती है। कोई तैरने वाला यदि भंवर में फंस जाता तो क्या कि निश्चित मृत्यु। तो साधक की मृत्यु तो मन जब भंवर में फंसे तब है। अब जब इंद्रियां वास्तविक हित साधने वाली, मंगल कल्याणकारी सुमरण करने वाली, सात निर्वाह करने वाली हो गई, तो स्पष्ट है कि अब बंधन छूटने का समय आया। तो छोरत ग्रंथि जानी घगराया, विघ्न अनेक करें तब माया। माया देखती बंधन छूटने वाला है, ये बेटा हमारे चंगुल से मुक्त होने वाला है, अनेक विघ्न उपस्थित करती है। कलबल छल करी जाहि समीपा, अंचल बात बुझावें दीपा। माया कल करेगी, बल करेगी, छल करेगी, हर हालत में उसके पास पहुंचेगी, कल्याण के लिए नहीं, दीपक बुताने के लिए, जो हृदय में प्रकाश ज्योति जग गई उसको बुताने के लिए। फिर भी उसके चंगुल में जब नहीं फंसा कोई साधक, तो रिद्धि सिद्धि प्रे रही बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावें आई। जब नहीं फंसा तो रिद्धियां प्रदान करेगी, यहां तक कि सिद्ध बना देगी। ऐसी अवस्था वाला साधक बाजू से निकल भर जाए तो मरणासन्न आदमी में सांस लौट आएगी, भले लौट आवे उसका स्वरूप ही ऐसा ही है, लेकिन जहां साधक ने स्वीकार किया हो हमारी वजह से ऐसा हुआ, तहां फिर माया कार्य कर ले। तो यही भंवर पड़ती है, सिद्ध भगवान कभी नहीं बनाते। बंधन छूटने का समय आता तो माया ही चारा फेंक देती, तो माया कलबल छल के करके आएगी, उससे भी बेटा चक्कर में नहीं पड़ा तो रिद्धि सिद्धि प्रे रही बहु भाई, यहां तक की रिद्धियां प्रदान कर देगी, सिद्ध बना देगी। और जहां उसके चंगुल में फंसा तो छूटी ने ग्रंथि मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। फिर कुछ दिन तो होगा वो चमत्कार और फिर समाप्त हो जाएगा, बंधन भी छूट गया, प्रकाश भी मिट गया। यही है, इसी को कबीर ने भंवर की संज्ञा दी कि नाना रूप, ये विविध रूप स्वरूप आने लगे रिद्धियों सिद्धियों के, मान सम्मान के। नाना रूप पड़ी मन भंवरी, जो मन में भंवर डालने लगी, खींचने लगी, मन को घसीटने लगी, तो गांठी जोरी भाई पति आई। दुनिया में भाई दाहिना हाथ है, ईश्वर पथ में आपका भाव ही सगा भाई है। यदि भाव टूट गया तो साधक नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं उसके पास। यदि भावों से सीधा गांठ जुड़ी हुई है अपने इष्ट से, यदि वो भावों से दूरी लगी हुई है, भावों की तारतम्यता लगी हुई थी इष्ट से, तो सारे अवरोध आएंगे और कट जाएंगे। वो कहीं भाव टूट गया तब गड़बड़, तब नष्ट हो जाओगे। तो गांठ जोरी भाई पतिया, यदि भावों की ग्रंथ बंधन पक्का है तो इस भंवर से उपार हो जाता पतियाई। विश्वास प्रभु देते जाते हैं, संभालते रहते हैं, और वो पतियाता जाता है, विश्वस्त तो होता जाता है कि ये नश्वर है, ये प्रभु नहीं, ये परमात्मा का स्वरूप नहीं, ये भंवर है। और यदि श्रद्धा की दोरी गांठ नहीं जुड़ी भावों से तो खतरा, अर्थात इस भंवर से पार होने का उपाय भी इष्ट के साथ हमारी भावों की दोरी लगी रहे, पार हो जाती। क्यों? कि प्रभु फिर आपको विश्वास दिलाते जाएंगे और आप पतियाते जाओगे। और साईं के संग सासुर आई, पहले साईं का दर्शन संगत, तब सहस्वरूप में सुरा की प्रवेश मिल गया, स्थिति आई। आगे कहते हैं, अर्धे देले चली सुहासिन, चौके रांड भई संग साईं। जब तक अधूरी अवस्था थी, प्रभु अलग और हम अलग थे, अधूरी अवस्था है, अर्घ्य दे ले, जब तक अर्कुचली अवस्था थी उसको उसको पीछे वाली विकारों को खत्म करना था, आगे ईश्वर की प्रक्रिया में प्रवेश लेना था, उसको कुछ त्यागना था, कुछ लेना था, तब तक तो चली सुहासिन। प्रभु हर समय उठाते बैठाते चलाते भजन कराते विश्वास दिलाते निर्भय करते ले चलते थे, वो थे और मैं था उनके अनुयायी, तब तक तो चली सौभाग्यशालिनी सुहासिन। किंतु चौके रांड भई संसाई, मन बुद्धि चित अहंकार ये चतुष्ट अंतःकरण है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, ये चारों जब कुटस्थ हो गए, चबूतरा एक स्थिर पदार्थ वस्तु का नाम है, जहां चारों कुटस्थ अचल स्थिर ठहर गए, यही है कबीर चौदह। जहां ये स्थिर हुए, अब संकल्प विकल्प का करे तो कौन करे, इस निरोध के साथ ही जहां ये चौका बना, ये चारों में जब स्थित्व आया, यही है कबीर चौदह। तो रांड भाई, तो क्या प्रिया मर गए, तो कहते हैं संग साई, साई मेरे साथ। जहां चित्त निरोध हुआ तो तुरंत वो परम चेतन का प्रतिबिंब पा जाता है, जिस प्रभु को ढूंढता था उसको अपने आत्मा में ही उसको प्राप्त कर लेता है। तो साई तो संग में है, आत्मा परमात्मा का भेद समाप्त हो गया, वो अभिन्न है। और राण इसलिए हो गई कि बाहर जैसे अन्न पति दिखाने के लिए कोई बचा ही नहीं, तो चित्त निरोध के साथ ही मन मिटा माया मिटी हंसा बेपरवाह जाका कछु न चाहिए सोई साहन सा। मन के निरोध होती कुटस्थ होते मतलब चौका न अंताकरण का स्थिर होना ही तो चौका है। इस मन के निरोध होते ही मन मिटा तो माया मिटी, माया ही मिट गई। मन के ऊपर ही तो माया का आना जाना था, मन ही धरातल ही खत्म हो गया, माया टिके तो कहां टिके। कहंसा मानिए जीवात्मा निर्द्वंद निश्चिंत, अब आगे पाने योग्य कोई सत्ता जब न रह जाए वो सहंसा है। मन मत मरे न जीवे जीव ही मरण न होए, सहज सने ही राम बिना भव पार न पावे कोई। मन का मंथन करो और मर जाओ, मन मन को मिटा दो, मन मत मरे फिर न जीवे, फिर वो कभी जीव भाव को प्राप्त नहीं होगा। तो होगा क्या कि जीव ही मरण न होए, और ऐसी स्थिति पा जाएगा कि उस जीव की फिर कभी मृत्यु नहीं होगी, किंतु सहज सनेव हार्दिक लगाव राम में नहीं, तो ये भवपार वाली अवस्था नहीं मिल सकती। तो भवपारण पावे कोई तो न तो आपको अविनाशी पद मिलेगा न पार पाओ। तो मन ही एक बीच में रुकावट थी, वही निरोध हो गया। तो चौके रांड भाई, क्यों चित्त निरोध के साथ ही उस परम चेतन परमात्मा का तो हृदय में आ गया, बाहर प्रभु कोई रह नहीं गया, इसलिए बाहर हम दिखा में उपति नहीं। और रांड भाई तो क्या प्रिया मर गए, कहते नहीं संत साई, साई मुझसे अभिन्न है, मेरे हृदय देश में प्रगट है और मैं भी उसी भाव में स्थित। अंत में कहते हैं भयो विवाह चली बिनु दुल्हा बाट जात समधि समझाई, संबंध हुआ लेकिन चली बिनु दुल्हा, लेकिन कोई अलग से हम बता दे कि दुल्हा ऐसा कोई दुल्हावा नहीं है, भक्ति पथ है, बाहर वा एक रास्ता है, ईश्वर पथ में भक्ति ही मार्ग है। इस भक्ति पथ में चलते चलते जहां समाधि की अवस्था आई तहां समझ आ गई, जिस स्वरूप जो हमारा आत्म स्वरूप विस्मृत था वो पकड़ में आ गया। तो बाट जात समधि समझाई, ईश्वर पथ में चलते चलते सम आदि से समाधि, आदि अनादि तक से परमात्मा है, परम प्रभु है, उसके साथ जहां स्थिति आई जो स्वरूप को भूला था उस स्वरूप पकड़ने आ गया। वेदांतियों का दार मुदार इसी है, लेकिन वो बातों से सिद्ध करना चाहते हैं और ये साधना से मिलने वाला है। मैं बगैर साधना के मैं तो चित्त कुटस्थ तो होगा और नहीं उस परम चित्त के रहते हुए नहीं माया पिंड छोड़ेगी और नहीं दर्शन और प्रवेश स्थिति मिलेगी, भजन नितांत आवश्यक है। तो बात जात समधि समझाई, ईश्वर पथ में चलते चलते जब आदि तो परमात्मा के साथ जहां समत्व प्राप्त हुआ तो समझ आ गई, जिस रूप को भूला था वो पकड़ में आ गया, जानने में आ गया, वेदवित हो गया। कहे कबीर हम गवने जाइबे, कबीर कहता मैं इस पथ पर गमन करूंगा। किस लिए? तरब तर जाने के लिए, भव सागर पार हो जाने के लिए। तरने की क्या पहचान है? तो तरब कंथ ले तुर बजाई, उस कंथ माने साईं प्रियतम, उन प्रियतम को उस कंथ को प्राप्त करके और फिर तुरिया अवस्था में सदा निमग्न रहूंगा। तुरिया अवस्था जहां मन के ऊपर जो सवारी आ जाए तो सदा निमग्न रहूंगा। जो ने घटे ने बड़े सदा एक रस रहनी तुरिया अवस्था। तो कबीर के भजन सुनने को उटंग पटंग, लेकिन साधना का जो अनुभव में उन्हें मिला था वो जो कहते हूं कोर्स काव्यबद्ध करके रख दिया। भजन प्राय साधक को लड़की के रूप में संबोधित किया है कबीर ने, इसलिए कि भजन शरीर कभी नहीं करता। शरीर तो भजन करने के लिए हमें एक घर मिला है, एक मकान मिला है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस साधन का धाम, धाम माने होता है घर निवास, और मोक्ष का दरवाजा है मानवता। अब इस शरीर के अंदर भजन जब भी आपसे पार लगे, अथवा माताओं से, तुलसी से पार लगा हो, चाहे मीरा मदालसा से, तो इष्टोन्मुखी उसके अंदर लगन जागृत हुई, उसने भजन कराया तो लौ रूपी लड़की, तो लगन उत्थान होते होते जब समाधि में प्रवेश पा गई तो जो उस अपने स्वरूप आत्म स्वरूप की समझ अनुभूति मिल गई, और इसी का नाम मोक्ष है। कबीर कहता मैं इस पथ पर गमन करूंगा, ये अनर्गल कथानक नहीं है, ये चलने के लिए मैं चला हूं इस पर। किस लिए? कि तरब कंठ ले तुर बजाय, उस प्रभु को साक्षात्कार करके तर जाने के लिए, और तर जाने के पश्चात तुरिया अवस्था में सदा निमग्न स्थिर रहने के लिए भजन नितांत आवश्यक है। बारी मथे घृत हो ये बरु सिखता थे बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय ये सिद्धांत अपेल। भले पानी मथने से घी निकल आए, ये असंभव भी कदाचित संभव हो जाए, बालू पेड़ने से तेल निकल आए, लेकिन बिना हरि का भजन, किसका भजन? प्रभु का भजन, उस परमात्मा के भजन के बिना कोई भव पार हो ही नहीं सकते। इसलिए भजन नितांत आवश्यक है। कोई हाँ, तो जब समझ काम करे तो बस केवल करना इतना ही है, जिसकी संतान हो, जिसके पुत्र हो, सुपुत्र हो, जिसके उस ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस ईश्वर के प्रति एकदम श्रद्धा हृदय में स्थिर अर्जित करो, नाम का जाप करो, लग जाओ ऐसे सत्पुरुषों की सेवा से, थोड़े दिन में रास्ता मिल जाए। बोलो श्री गुरुदेव।